ऐसे लग रहा है कि एक एक चीज आंखों देखी नजर आती है। वल्लज़ीना युहाजुना फिल्लाहि मिन बादि मस्तुजीब लहू हुज्जतुहुम, अल्लाह की दावत पर लब्बई कहे जाने के बाद जो लोग लब्बई कहने वालों से अल्लाह के मामले में झगड़ते हैं, उनकी हुज्जतबाजी उनके रब के नजदीक बातिल है और उन पर उसका गजब है और उनके लिए सख्त अजाब है। क्या समझ आया? आप अल्लाह की बात मानते जाएं और जो फिर झगड़ा करे उसका मामला अल्लाह के साथ है। वो अल्लाह ही है जिसने हक के साथ ये किताब और मीजान नाजिल की है। और तुम्हें क्या खबर, शायद फैसले की घड़ी करीब आ लगी हो। जो लोग इसके आने पर ईमान नहीं रखते वो तो इसके लिए जल्दी मचाते हैं, मगर जो इस पर ईमान रखते हैं वो इससे डरते हैं और जानते हैं कि यकीनन वो आने वाली है। खूब सुन लो, जो लोग इस घड़ी के आने में शक डालने वाली बहसें करते हैं वो गुमराही में बहुत दूर निकल गए। हर दूसरी तीसरी आयत में लफ्ज शक का आ रहा है इस बारे में। और याद रखिए, मुशरिकीन ने मक्का का शक आखिरत के आने में था, आनी है कि नहीं। आज हमारे मुसलमानों का शक क्या है? आनी तो है, इसको तो मैं नहीं छोड़ सकती, पर मैंने बच जाना, मुझे अल्लाह ने बचा देना, और कुछ किए बगैर जन्नत मिल जानी है, और पढ़े पढ़ाए मैंने फर्स्ट आ जाना है, ये शक है। देखिए ना, आपके बच्चे को पता है कि इम्तिहान है कल और वो पढ़ ही नहीं रहा। आप फिर कहते, बेटा आपका कल इम्तिहान है? जी मामा। तो आप पढ़ क्यों नहीं रहे? अब जब वो पढ़ नहीं रहा तो आपको दो तीन बातें तो आएंगी। पहली बात है, इसको यकीन नहीं है कि कल इम्तिहान है। दूसरी बात है, या तो इसने कोई नकल तैयार करके रखी हुई है कि मारनी है और जाके दे आना है, या फिर किसी एग्जामिनर को पैसे दिए हुए हैं कि मेरे पेपर में जो आना है वो लिखा देना। जब पता है कल इम्तिहान है और आप आज तैयारी नहीं कर रहे, तो दैट मीन आपको इम्तिहान का यकीन नहीं है। जब हम मुसलमानों को पता है, फमई आमल मिसकाल जरत इन खैरें जरा और शर्रें जरा, हर जर्रा नेकी तुलनी है, तो फिर नेकियों के मामले में हम इतने ठंडे क्यों हैं? फिर इतने ढीले क्यों हैं? फिर अपनी नेकियां दूसरों को क्यों दे रहे हैं? और अगर पता है कि हर छोटा सा शर भी अल्लाह ने दिखाना है, तो फिर छोटे छोटे गुनाहों से रुकते क्यों नहीं? दैट मीन शक है कि कोई नहीं आनी। आज हमारा शक कॉल का नहीं है, फेल का शक है। आप देखिए कि वो एक वाक्या हजरत ईसा की तरफ मंसूब किया जाता है कि उनके पास एक खातून आई और कहने लगी कि रो रही है कि मेरे बच्चों की लंबी उम्र की दुआ करो, मेरा एक बच्चा 100 साल का मर गया, दूसरा 200 साल का मर गया, ये है वो है। काम्मा, शुक्र करो, हमारे बाद एक ऐसी उम्मत आने वाली है कि जिसकी शान तो बड़ी है लेकिन उनकी उम्रें बड़ी छोटी होंगी। का अच्छा, फिर तो वो मिट्टी के घरों में रहेंगे। 60-70 साल की उम्र के लिए क्या दुनिया में दिल लगाना? तो ये दुनिया जगह दिल लगाने की नहीं है। असल बात यह है, अब अगली आयतों को सुनिए, ये हमारी आज की आयतें तदब्बुर भी हैं। अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है, ये उसकी मेहरबानी है जो हमारी सारी बातों के बावजूद हमें बचा लेता है और फिर हम उसके रास्तों में निकल पड़ते हैं। फरमाया, अल्लाहु लतीफुम बिबादिही यरज़ुकु मन यशा, अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है, जिसे जो चाहता है देता है। लिखें, आज जिसको जो मिला है ये अल्लाह की चाहत से मिला है, और वो बड़ी कुव्वत वाला और जबरदस्त है। दुनिया में अल्लाह का रहम है, उसका लुत्फ व करम है कि आज मैं और आप खा भी रहे हैं, और अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है। अब आगे आपके मेरे लिए एक चॉइस है, वो क्या? मन का न युरीदो हरसल आखिरती नजित लहू फी हरसी ही, जो कोई आखिरत की खेती चाहता है इसकी खेती को हम बढ़ाते हैं। यानी फिर उसकी आखिरत में इंशाल्लाह बहुत कुछ होगा, वहां एक नहीं 50 घर होंगे, 100 मुरब्बे जमीन होगी, जो वहां के बीज डाल रहा है उसको वहां मिलेगा। और इसके बरक्स, व मन का न युरीदु हर्सद दुनिया नूती ही मिन्हा, जो कोई दुनिया की खेती चाहता है इसे दुनिया ही में हम दे देते हैं मगर आखिरत में इसका कोई हिस्सा नहीं है। सोरा सा इस पर गौर व फिक्र कीजिए। आप देखिए कि अकलमंद किसान कौन है। लिखिए, सबसे पहली बात, अपने खेत में बीज डाले, पता चला बीज डाला था जो, वो अपनी जमीन पे नहीं किसी और की जमीन पे डाल दिया, मेहनत भी की, खड़ा भी किया, पानी भी दिया, पैसा भी लगाया, कि एंड ऑफ द ईयर उसके पास कुछ पैसा आएगा। ये है मिसाल रियाकार की, दिखावे वाले की। आप देखिए कि आप इसको सोचें, एक मिसाल लीजिए कि एक किसान है, उसको बीज डालना है, अपनी जमीन पे डाले, मुनासिब मौसम में डाले, दूसरी शर्त है ना, फिर बीज डालने से पहले मिट्टी को नरम करे, फिर फिर डालने के बाद उसको पानी दे, और फिर उसके बाद उसमें से जो जड़ी बूटियां उगती रहे उसको निकाले, और जब वो नई नई फसल निकले तो कीड़े मकोड़े और चिड़ियों से उसको बचाए, सारे काम करेगा तो एंड ऑफ द जो ईयर होगा उसके पास इतनी फसल जरूर होगी कि जिससे वो अपने पूरे साल का खर्चा निकाल सकता है। ये मिसाल तो सबको आती है। अल्लाह ताला ने मुझे आपको इस दुनिया में जो भेजा ना, तो ये जमीन जो है ना दुनिया की, ये आखिरत की खेती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया दुनिया मिज़रा अल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है। आज यहां बीज डालेंगे फसल वहां कटेगी। इंग्लिश में कहते हैं एज यू सो, जैसा बीज डालोगे वैसा ही निकालोगे। कहते हैं जैसा बीज वैसी फसल। अब जो कुछ आज मैं आप कर रहे हैं बिल्कुल इसके रिजल्ट्स आखिरत में होंगे। इस पे हमने एक लेक्चर किया था आज से 2-3 साल पहले यूएसए ट्रिप में, कि आखिरत की या दुनिया की खेती में आखिरत का बीज नहीं है, कुछ इस तरह का उसका टॉपिक था। जो साथियों को आता होगा आज आपको भेजेंगे, उसकी सीडी भी बनी थी। हम में से बहुत सारे लोग सारी जिंदगी दुनिया की खेती में बीज डालते रहते हैं, वहां जाके पता चलेगा कि यहां तो साथ कुछ भी नहीं आया। कैसे ये बीज डालते हैं? सिंपल सी बात है, जो अल्लाह ने दिया उसको आखिरत की खेतियों में डाल दीजिए। इस दुनिया में वो काम करें जो हजरत यूसुफ ने किया था कहत के दिनों में, कि थोड़ा सा निकाल के खा लो, क्योंकि आगे 7 साल कहत के आने वाले हैं, और जो पीछे रखना है उसको बालियों में ही छोड़ देना ताकि कीड़ा ना लगे। ये एक मोमिन का अपने माल और अपनी नेमतों के बारे में तर्ज अमल होना चाहिए। दुनिया होते ला या मुत, इतना खा लूं जितने से जी सकूं, कपड़ा इतने पैसे लगाऊंगी उस पे जितने बस मेरे लिए गुजारा ना हो जाए, मेरा सीजन गुजर जाए, कुछ भी, हर चीज को अपने ऊपर लीजिए। खाना उतना पकाऊंगी जिससे मेरे बच्चे भी खा ले, मैं भी खा लूं, किसी को देना है दे दूं, इसमें एक कतरा जाया ना हो। बाकी किधर जाएगा सारा? हम कहते हैं कमाते किस लिए, खाना किस लिए, ये क्या, बाकी सारा आखिरत की खेतियों में जाएगा। ये हकीकत समझ आई तो अबू बकर सिद्दीक को आई। कब आई? जब ये कुरान खोला उनकी आंखों के सामने। ये हकीकत समझ आई तो अबू तलहा को समझ आई। ये समझ आई तो अबू दहदा को समझ आई। ये अब्दुर्रहमान बिन औफ को समझ आ गई, ये उस्मान गनी को समझ आ गई। आज अगर हमें समझ आ जाए तो हमारी जिंदगी के आधे से ज्यादा झंझट ही खत्म। आधे से ज्यादा वक्त जो हमारा सिर्फ इस गम और हिरस में गुजर जाता है ना, दुनिया दुनिया, ये सब खत्म होगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें अपने बारे में सही फैसला करने वाला बनाए। किसी का क्या जाता है, सोता रहे किसान, मौजें करे, फिल्में देखे, क्या होगा जिस दिन सारे फसल काटने जाएंगे तो उस दिन अफसोस करेगा, हाय काश मैंने वक्त पे बीज डाला होता। आज आपको उन नेकियों की वैल्यू नहीं पता जो अल्लाह आपसे करवा रहा है, कल जब उन नेकियों की कीमत डलनी है ना, फिर आपको पता चलेगा कौन जीता कौन हारा, कौन आगे गया कौन पीछे गया। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि तालिबे इल्म को इम्तिहान के दिनों में कोई नहीं पता होता क्या पढ़ूं या ना पढ़ूं, क्या फर्क है, रिजल्ट वाले दिन उसका हाल पूछिए जाके। हसरतें, अल्लाह हमें उस दिन की हसरत से बचाए। क्या ये लोग कुछ ऐसे शरीके खुदा रखते हैं जिन्होंने इनके लिए दीन की नौइयत रखने वाला एक ऐसा तरीका मुकर्रर कर दिया है जिसका अल्लाह ने इज़्ज़त नहीं दिया? सच बताऊं तो आज यही जुमला अल्लाह हमसे भी पूछता है, ये किस दीन की बातें करते हो? आज यकीन करे दीन के नाम पे दीन नहीं है पूरा। अल्लाह हमें उस दीन पे रखे जो अल्लाह के नबियों और सहाबा को समझ आ गया। अगर फैसले की बात तय न हुई होती तो इनका कदी या कब का चुका दिया गया होता। यकीनन इन जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है। तुम देखोगे कि ये जालिम इस वक्त अपने किए के इंजाम से डर रहे होंगे और वो इन पर आकर रहेगा। क्या पता चला कि डरना उस वक्त फायदा नहीं देगा, आज का डर उस दिन फायदा देगा। आप देखिए रिजल्ट वाले दिन कोई कांप रहा है, कोई रो रहा है, हसरत कर रहा है, अब क्या फायदा, अब तो रिजल्ट बन निकल आया। तो अल्लाह ताला हमें कयामत के दिन की हसरतों से बचाए। अब इस बुरे इंजाम के ऑपोजिट एक और खूबसूरत इंजाम, वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहात, बखिलाफ इसके जो लोग ईमान ले आए और जिन्होंने नेक अमल किए हैं वो जन्नत के गुलिस्तानों में होंगे, वो जो कुछ भी चाहेंगे अपने रब के हाँ पाएंगे। बखिलाफ इसके जो लोग ईमान ले आए और जिन्होंने नेक अमल किए वो जन्नत के गुलिस्तानों में होंगे और जो कुछ भी वो चाहेंगे अपने रब के हाँ पाएंगे। और ज़ालिक हुवल फ़ज़लुल कबीर, यही बड़ा फजल है। कैसे? फ़ज़ले कबीर को पाने के लिए जोहदे कबीर की। ये वो लोग हैं जिन्होंने फुल टाइम दीन को दिया और अपनी ख्वाहिशात को दबा दिया। याद रखिएगा, अल्लाह हक नहीं रखता। आज अगर आपको अल्लाह के दीन के किसी तकाजे को खुशी से पूरा करने में जज्बाती कुर्बानी देनी पड़ी, किसी को नाराज करना पड़ा, किसी का मुंह बन गया, कोई बात नहीं, कर लीजिए, कल अल्लाह वो देगा जो आप चाहेंगे। हाईलाइट कर लीजिए, वहां तो वो मिलेगा आपका जो आप चाहेंगी। मा यशाउन, दुनिया में क्या होता है? क्या हमेशा जो लेने जाते हैं बाजार में वो मिल जाता है? जो सोच के गए होते हैं वो मिलता है? बिल आखिर फिर कहते हैं वो नहीं मिलता, ये लेके चलती हूँ। दुनिया में भी कोई जरूरी नहीं कि वो सब मिले जो आप चाहती हैं। वहां अल्लाह कहते हैं कि यहां, इस पर एक जुमला लिख लें, ये दुनिया रब चाहे तो वो दुनिया मन चाहे, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, तू उसको कबूल कर ले जो मेरी चाहत है, तो तुझे वो भी दे दूंगा जो तेरी चाहत है। असल में ये चॉइस मैचिंग का प्रोसेस है। अल्लाह को कहें, अल्लाह मेरी मर्जी वो जो तेरी मर्जी, मेरी पसंद वो जो तेरी पसंद, मेरी रजा वो जो तेरी रजा, मेरी नाराजगी वो जो तेरी नाराजगी। इस दर्जे के जरा बच्चे बन के तो दिखाइए अल्लाह को, आपके हाथ में वो चीज होगी जो आप चाहेंगे। आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपको किसी को कहना नहीं पड़ेगा। शर्त यह है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये शेर आमतौर पर समझ नहीं आता लोगों को। मैंने इस वक्त जिस एंगल से पढ़ा है वो ये है कि अपनी चाहत को अल्लाह की चाहत के आगे डाल दें। फरमा ये है वो चीज़ जिसकी खुशखबरी अल्लाह अपने इन बंदों को देता है जिन्होंने मान लिया और नेक अमल किए। दुआ करें अल्लाह में मानने वाला बना दे। जो कुछ भी वो चाहेंगे अपने रब के हाँ पाएंगे, यही बड़ा फजल है। ये है वो चीज़ जिसकी खुशखबरी अल्लाह अपने बंदों को देता है जिन्होंने मान लिया और नेक अमल किए। ए नबी, इनसे कह दो कि मैं इस काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूँ। ये बेलौसपन चाहिए, इतनी बेनियाजी हो कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ एक चीज है, वो क्या? अलबत्ता कराबत की मोहब्बत जरूर चाहता हूं। कभी आप इस आयत पे रहे, अल्लाह के नबी को तो देखें, सब अपना खानदान था। ये जितने मक्का में बड़े बड़े सरदार और जो बड़े बड़े लोग आपके मुखालिफ बने, वो आपके चचा फुफी के रिश्तेदार ही थे। अल्लाह कहते हैं अपने नबी को कि नबी की बात कि बस कम अज कम रिश्तेदारी का तो ख्याल करो। देखिए, अपने रिश्तेदारों से एक खास उम्मीद होती है, इसमें कोई शक नहीं है, प्यार भी होता है। 100 बेगाने एक अपना, किसी शहर में 100 दोस्त हैं और एक आपके मामू चचा का घर है, आप उनके घर खुशी से पहुंच जाएंगे जब चाहेंगे, गैरों के घर ऐसे नहीं जाते। जब अपने साथ देते हैं ना तो खुशी भी बहुत होती है। क्यों मूसा ने हारून को मांगा? कहा बस दोस्ती का रिश्तेदारी का ही ख्याल रख लो, जो कोई भलाई कमाएगा हम इसके लिए इस भलाई में खूबी का इजाफा कर देंगे, बेशक अल्लाह बड़ा दरगुजर करने वाला और कदरदान है। क्या ये लोग कहते हैं कि इस शख्स ने अल्लाह पर झूठा बहतान घड़ लिया है? अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हारे दिल पर मोहर कर दे, नौसुबिल्ला, वो बातिल को मिटा देता और हक को अपने फरमानों से हक कर दिखाता है। वो सीनों के छुपे हुए राज जानता है, वही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है। अल्लाह हमारी भी तौबा कबूल कर ले और बुराइयों से दरगुजर फरमाता है। हालांकि तुम लोगों के सब अफाल का इसे इल्म है, वो ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों की दुआ कबूल करता है और अपने फजल से उनको और ज्यादा देता है। अल्लाह ताला हमें अपने फजल से और ज्यादा दे दे। वल काफिरून अलहुम अज़ाबुन शदीद, रहे इनकार करने वाले तो इनके लिए सख्त सजा है। वलौ बसत अल्लाहु रिज़्क़ा, देखिए कितनी बड़ी हकीकत अल्लाह ने अगली आयत में खोली है। अगर अल्लाह अपने सब बंदों को खुला रिस्क दे देता, यानी सारे मिलियन एरियन हो जाते, सारे करोड़पति हो जाते, तो वो जमीन में सरकशी का तूफान बर्पा कर देते। बात सच है? देखिए पैसा नहीं होता ना, कम होता है ना तो बंदा दबा दुबा रहता है, कहीं चला भी गया तो छुपके बैठ जाएगा कि अब मैं, मेरे कपड़े इस काबिल नहीं है कि मैं उठ के जरा सारे टेबलों पर जाके दिखाऊं, बैठ जाओ चुप करके। और फिर बंदा बाहर से निकलता है तो कहता है चलो छोड़ो अब क्या करना है, चलो जरा सा ढाक छुपा के निकलते हैं। मसला कब आता है? जब हमारी दुनिया बढ़ती है। वो कहते हैं ना अल्लाह हुसन देता है तो नखरा भी देता है। जरा इमेजिन तो कीजिए, सारे ही अमीर होते और अमीर हो जाते तो फिर सरकशियों का हाल क्या होता? अभी तो हमें अल्लाह ने अपने आपे में रखा हुआ है, मगर वो एक हिसाब से जितना चाहता है नाजिल करता है। यकीनन वो अपने बंदों से बाखबर है और उन पर निगाह रखता है। हदीस में आता है कि लोगों के पास जो रिस्क है ना, उसका हिसाब उनके ईमान के साथ है। खुलासा बता रही हूँ हदीस का। कुछ लोग हैं अल्लाह ने उनको बहुत दिया हुआ है, अगर अल्लाह उनका कम कर दे तो ईमान से हट जाएंगे, क्योंकि वो शुक्र कर करके अल्लाह के रास्तों में खुशियों में बांटते हैं, उन्होंने अपने माल को बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। इसके बरक्स कुछ को थोड़ा सा दिया हुआ है, लेकिन ठीक है अल्लाह इनको ज़रा सा ज़्यादा दे दे तो ये तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो जो अल्लाह ने जिसको दिया ना शुक्र कीजिए। असल बात यह है कि हम दूसरे की चीज़ों को देख के रश करते हैं, हमें नहीं पता कि हमें इसकी कीमत क्या देनी पड़ेगी। वही है जो लोगों के मायूस हो जाने के बाद मीं बरसाता है और अपनी रहमत फैला देता है, और वही काबिले तारीफ़ है। इसकी निशानियों में से ये ज़मीन और आसमान की पैदाइश और ये जानदार मखलूकात जो इसने दोनों जगह फैला रखी हैं, वो जब चाहे इन्हें इकट्ठा कर सकता है। तुम लोगों पर जो भी मुसीबत आती है अपने हाथों की कमाई से आती है, और बहुत से कसूरों से वो वैसे ही दरगुजर कर जाता है। तुम ज़मीन में अपने रब को आजिज नहीं करने वाले, और अल्लाह के मुकाबले में तुम कोई हामी और नासिर नहीं रखते। इसकी निशानियों में से है ये जहाज जो समंदर में पहाड़ों की तरह नजर आते हैं, अल्लाह जब चाहे हवा को साकिन कर दे और ये समंदर की पीठ पर खड़े के खड़े रह जाएं। इसमें बड़ी निशानियां हैं हर उस शख्स के लिए जो कमाल दर्जा सब्र और शुक्र करने वाला हो। क्या पता चला कि अल्लाह ताला बंदे को जो देता है उस पे नज़र भी रखता है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें नेमतों की आजमाइश से बचाए, और अगर कोई दुख गम आ जाए तो उसकी आजमाइश से भी बचाए। एक तीसरी ऑप्शन, या इन पर सवार होने वालों के बहुत से गुनाहगारों से दरगुजर करते हुए इनके चंद ही करतूतों की पादाश में इनको डबो दे। क्या पता चला कि बाज़ दफ़ा जहाज लोगों के गुनाहों की वजह से भी डूब जाते हैं, और इस वक्त हमारी आयात में झगड़े करने वालों को पता चल जाए कि इनके लिए कोई जाए पनाह नहीं। ज़रा सा सोचिए, जब भी हम सफ़र करते हैं ख़ास तौर पे, अब रोज़ तो अमूमन गाड़ियों में बैठते हैं, कभी हमने ये बात सोचा कोई गुनाह करके बैठी हूँ इसके जुर्म में हादसा हो जाएगा? मुमकिन है कि नहीं? और मैं तो हर दिन जब भी जाऊँ और इतनी गाड़ियों में से गुजर के जब इंसान अपनी मंजिल पर पहुँचता है, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ये भी एक आप ही की देन है। और वाकई वो बात आज सूरह ज़ुख़रुफ़ में आ रही है दुआ कि सुबहान अल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, हम कहाँ थे इन गाड़ियों पर भी काबू पाने वाले। तो अमल की बात क्या है कि गुनाह हो जाए फ़ौरन तौबा करें, और अल्लाह से कहें कि अल्लाह हमें हमारे गुनाहों पर ना पकड़ना। इसके बाद अब जो अगली आयत है, ये आज की आयत तदब्बुर हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस बारे के थीम को ज़ाहिर करती हैं कि ये दुनिया एक कतरा और आखरत एक समंदर। आइए सुनते हैं। फ़मा ऊती तुम इन शई इन फ़मता हयात दुनिया वमा इंदल्लाहि खैरुम व अबका, जो कुछ भी तुम लोगों को दिया गया है वो महज दुनिया की चंद रोज़ा जिंदगी का सरो सामान है। सोचिए क्या कुछ दिया गया आपको, हम तो उसकी लिस्ट भी नहीं बना सकते। और जो कुछ अल्लाह के यहाँ है वो बेहतर भी है और पायदार भी है। यानी तुम्हारे पास जो है ये चंद दिन के लिए मिला, जस्ट फॉर यूज। आप देखिए, आप होटल में जाते हैं तो आपको बहुत कुछ मिलता है, लेकिन आप अपने साथ नहीं लेकर आ सकते। ये अलग बात है कि हम वहाँ से भी कई चीज़ें उठा के ले आते हैं। इस्तेमाल की चीज़ है, उसको इस्तेमाल करना है। तो ये दुनिया इस्तेमाल के लिए, जमा करने के लिए नहीं। साथ तो कोई लेकर भी ना गया। हाँ, जो अल्लाह के यहाँ है वो भी बेहतर है और पायदार भी है। वो इन लोगों के लिए है जो ईमान लाए और अपने रब पर भरोसा करते हैं, जो बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई के कामों से परहेज करते हैं, और अगर गुस्सा आ जाए तो दरगुजर कर जाते हैं, जो अपने रब का हुक्म मानते हैं, नमाज कायम करते हैं, अपने मामला आपस के मशवरे से चलाते हैं, हमने जो कुछ भी इनको रिस्क दिया है इसमें से खर्च करते हैं, और जो कुछ रिस्क हमने इनको दिया इसमें से खर्च करते हैं, और जब इन पर ज्यादती की जाती है तो इसका मुकाबला करते हैं, बुराई का बदला वैसी ही बुराई है, फिर जो कोई माफ कर दे और इस्लाह करे इसका अजर अल्लाह के जिम्मे है। अल्लाह ताला जालिमों को पसंद नहीं करता, और जो लोग जुल्म होने के बाद बदला लें इनको मलामत नहीं की जा सकती। मलामत के मुस्तहिक तो वो हैं जो दूसरों पर जुल्म करते हैं और जमीन में नाहक ज्यादतियां करते हैं, ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। हाल बता जो शख्स सब्र से काम ले और दरगुजर करे तो ये बहुत उलुल अजमी के कामों में से है। आप देखिए, सात आठ आयतें हैं, लेकिन बंदा मोमिन की एक तस्वीर है। अल्लाह ताला ने एक ईमान वाले से जो चीज़ें चाही हैं उनका यहाँ एक खुलासा है। ये सब कब आसान होता है? जब दुनिया और आखिरत की हकीकत को पहचाने। पहला हिस्सा अगर आप थोड़ा सा इस पे गौर करें, तदब्बुर की आयत भी है, फमा ऊती तुम, जो कुछ भी तुमको दिया गया है चंद दिनों की जिंदगी का सामान है। अगर ये सोच आ जाए तो आप देखेंगे अगली जितनी भी खूबियां हैं ना, इनको इख्तियार करना आसान होता है। किसी ने कोई नुकसान दिया, चलो चार दिन की बात है, आप आपे से बाहर नहीं आएंगे। किसी ने आपको गुस्सा दिलाया, चलो छोड़ो ना, अब क्या गुस्सा करना, चार दिन की तो बात है। आपने कभी देखा होगा कि कुछ लोग बहुत थोड़े दिन के लिए कहीं रहने जाते हैं, फिर वहां किसी की कोई बात बुरी लग जाए, कोई अच्छी लग जाए, क्या कहते हैं, चलो ना अब चुप करो, चार दिन के लिए आए हैं, खामोशी से गुजर जाओ, कौन सा यहां हमेशा रहना है, हाँ रहना होता तो बात करते। बस अपने आप को एक मुसाफिर बना ले। आप देखिएगा कि ना सिर्फ ये है, कबीरा गुनाहों से बचेंगे, क्योंकि कबायर और फवाहिश का जहां जिक्र आया हदीस में आता है, सुबान रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, क्यामत के दिन कुछ लोग तहामा पहाड़ जितनी नेकियां लेकर आएंगे, यानी बहुत ज्यादा नेकियां होंगी, मगर वो सब गुबार बनाकर उड़ा दी जाएंगी, फूक मारी जाएगी और वो उड़ जाएंगी। पूछा जाएगा कि आखिर क्यों, नेकियां तो ये बहुत लेकर आए थे, और आजकल तो हम नेकियां समेटते ही हैं, पहले दिन की नेकियां थी अब रात की नेकियां, किसकी नेकियां गुबार बना दी जाएंगी? फरमाया ये वो लोग हैं जो दिन में तो नेकियों के काम करते थे, लेकिन रात की तन्हाइयों में जब इनको हराम काम का मौका मिलता तो उससे नहीं रुकते थे। अल्लाह अकबर। आज हमारे कल्चर में क्या आम है, अडल्ट्स ओनली, बच्चे नहीं देखते। तो क्या अम्मी अबू उस वक्त छुप के कोई खबरें सुन रहे हैं? याद रखिए, तन्हाई में इंसान अपना आप जाहिर करता है। शौहर बीवी क्यों ना हो, वो भी कोई ऐसी फुखश चीज नहीं देख सकते। आज आप देखिए कि फुखश और कबायर जो हम दूसरे मुल्कों में रहने वाले तो क्या देखेंगे, अपने मुल्कों में देखिए राह चलते बिलबोर्ड्स हमें इसकी दावत देते हैं। तो दुआ कीजिए कि हमारी जिंदगी से ये चीजें निकल जाएं। और फिर जब अपने लिबास ही इस किस्म के होंगे जिससे निकाह पाक ना हो तो क्या बनेगा। फिर दूसरी बात आप देखिए कि बाकी नमाज रोजे की बातों के दौरान जो अहम बात इसमें हुई वो क्या थी, वामरहुम शूरा बैनहुम, मशवरे के साथ काम करना। आप देखिए सूरत शूरा इसी मुनासबत से है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबा कराम कहते हैं, आपसे ज्यादा मशवरा करने वाला हमने किसी को नहीं पाया। हालांकि कौन थे, नेक थे, सब कुछ छोड़ दीजिए, अल्लाह के नबी, जिब्राइल उनके पास आते, वही उनके ऊपर दिल पर उतरती, इसके बावजूद मशवरा कौन लेता है, जो अंदर से आजिज होता है, जो अंदर से छोटा होता है, वो अपने आप को अकले कुल नहीं समझता, बस बस मैंने कह दिया, मैंने डिसाइड कर लिया, ऐसी चीजें कभी भी ज्यादा दिन नहीं चलती। आप एक छोटा सा घर चलाते हैं जिसमें चार छह बच्चों और बाकियों को लेकर चलते हैं, मशवरे की आदत डालें। अमूमन देखिए सिर्फ खाने पीने पर दो चार झगड़े हो जाते हैं दिन में एक बार, आप मशवरा कर लें, वीकेंड पे बैठे अपने बच्चों को साथ लें, चलो बेटा आओ पूरे हफ्ते का मेन्यू बनाते हैं आज के, उनको पहले से ही पता है कि भिंडी पकनी है तो उस बहस नहीं करेंगे। मशवरा करने का एक फायदा क्या होता है, एक तो सबकी अकल सामने आती है, एक तो सबकी असल भी खुलती है, और दूसरी बात है कि कई लोगों में वो खूबियां हो सकती हैं जो आप में नहीं है, क्रिएटिविटी होती है, किसी को अल्लाह ने एक खूबी दी, किसी को दूसरे ने, आपको वो सोच नहीं गई जिस पे दूसरे की चली गई। और एक और वजह भी होती है कि कुछ लोग बड़े क्रिटिकल होते हैं और आप क्रिटिकल नहीं होते, आपको सब ठीक लग रहा होता है, वो दूसरा आपको एक ऐसी सोच देता है, कहते हैं अरे मैंने तो ये सोचा ही नहीं। तो बहुत सारे फूलों का एक गुलदस्ता जब बनता है तो ज्यादा खूबसूरत लगता है, फिर मशवरे से फायदा होता है। फिर एक और चीज होती है, हेल्पर्स मिल जाते हैं। आप अगर अपने बच्चों को कुछ खिलाना चाहती हैं और रेजिस्टेंस वो कर रहे हैं, आप मशवरा कर लीजिए, आप बोलेंगे, वो कहेंगे बेटा आपसे मशवरे से ये हुआ था, जहनी तैयारी हो जाती है। अब सवाल पैदा होता है मशवरा किससे किया जाए, लेकिन जिसको मजीद सुनना है आप खुद जाइए सवीलुल जन्ना के लिंक पे खोल के, या दूसरी किसी तफसीर या किसी और की भी सुन लीजिए, आप इस आयत की तफसीर सुन लीजिए। इतना खूबसूरत एक किरदार आता है इसके बाद एक लीडर का, एक मुंतजिम का, जिसने इन कामों को करना होता है। फिर आप देखिए कि इसमें एक और चीज है, और वो क्या है कि जब कोई उनके साथ बदतमीजी करता है, बगी करता है, ज्यादती करता है, तो वो माफ कर देते हैं। क्या पता चला कि मट्टी का मांदू नहीं होता मोमिन, बेवकूफ नहीं होता, उसको साफ पता होता है कि कौन ज्यादती कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, किसका पॉइंट ऑफ व्यू गलत है, किसका सही, वो अल्लाह के लिए झुक जाता है, क्योंकि मन तवादा लिल्लाह। इसलिए माफ करने से इस्लाह होती है, तो माफ कर दीजिए। बदला लेने से इस्लाह होती है, बदला ले लीजिए, छोड़ देने पे इस्लाह हो रही है, छोड़ दीजिए, पकड़ने पे इस्लाह होती है, पकड़ लीजिए। बंदा मोमिन किसी मामले को अना का मसला नहीं बनाता, ईगो का मसला नहीं बनाता, यही तबलीग का तरीका है, यही दीन को नाफिज करने का तरीका है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें हिदायत दे। अगर शीट पे आगे चलिए तो आज की पिक्चर देखिए आपके सामने, डोंट सेक्रीफाइस द ओशन फॉर द बोल ऑफ दुनिया। ओशन क्या है, समंदर क्या है, आखरत। ये देखिए, इस समंदर के अंदर एक बर्तन छोटा सा, उसमें एक मछली। कोई समंदर छोड़ के इस एक मछली को पाने की कोशिश करे, उसको क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग आज अमली तौर पे यही करते दिखते हैं, सारी जिंदगी दुनिया 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 लेते हुए दुनिया से चले जाते हैं, और सिर्फ चंद फुट जगह मिलती है आपको इस दुनिया में से। हदीस बहुत खूबसूरत तरीके से इस पॉइंट को वाजे करती है, सही मुस्लिम की ये रिवायत है, और सहाबी जो बयान करते हैं, हजरत मुस्तवर फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम दुनिया आखिरत के मुकाबले में सिर्फ इस तरह है कि जिस तरह तुम में से कोई आदमी अपनी उंगली को समंदर में डाल दे, इमेजिनेशन में लाए, फिर निकाल कर देखे कि इसमें क्या लगा है। याह्या की रिवायत के अलावा बाकी रावियों की हदीस में है, मैंने रसूलुल्लाह को ये फरमाते हुए सुना, अबू उसामा की रिवायत में इस्माइल ने अंगूठे से इशारा किया, यानी समंदर में उंगली डालें तो जो उंगली पे पानी लगा ये दुनिया है और समंदर आखरत है। क्या कहें फिर, जो अल्लाह के पास है वो बाकी है। थोड़ा सा अगर इंसान इसे एक मिसाल को ही सामने रखे तो कितने फैसले करने आसान हो जाते हैं। जब जिंदगी में कोई मामला करें तो इस बात को क्राइटेरियन बना लें कि समंदर ले रही हूं या कतरा ले रही हूं, आप देखिएगा बहुत कुछ अच्छा होगा। आप कोशिश की, वो काम जो कोशिश से बिना हुआ उसको दुआओं से कीजिए। आज की दुआ बड़ी खूबसूरत है, जरा सा मेरे साथ दोहरा लीजिए, अल्लाहुम्मा जाल हुब्बका अहब्बल अशियाई इलैया वजाल खौफका अखवफल अशियाई इलैया वक्ता अन्नी हाजातिद दुनिया बिशौकी इला लिकाइका व इजा अक्ररता आयुन अहलिद दुनिया मिन दुनियाहुम फअक्किरा ऐनी मिन इबादतिक। देखिए दुआ कितनी प्यारी है, तर्जमे से अंदाजा होता है, ए अल्लाह अपनी मोहब्बत को मेरे लिए हर चीज की मोहब्बत से बढ़ा दे, मुझको अपना खौफ हर चीज के खौफ से ज्यादा कर दे, दुनिया की हर तलब पर अपनी मुलाकात का शौक गालिब कर दे, और जब तू दुनिया वालों को इनकी दुनिया से ठंडक दे तो मेरी आंखों की ठंडक अपनी इबादत में रख ले। मांगेंगे ये दुआ, देखिएगा गैर महसूस तरीके से दुनिया की मोहब्बत दिल से निकल जाएगी अल्लाह के हुक्म से, शऊर से मांगेंगे इंशाल्लाह। आज का वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल, मुकर्रर वक्त में इबादत करें, तिलावते कुरान और जिक्र अज़कार के लिए वक्त निकालें। आप देखिए कि कल की जो टिप थी कि वक्त नहीं मिलता, ये कौन इस पे कामयाब हुआ, किसने फिर भी गलती से बोल ही दिया एक बार? कौन है जिसने कल से लेके आज तक एक बार भी ये नहीं कहा कि वक्त नहीं मिलता? ओहो, ये तो वो थोड़े हैं। करें क्या वक्त के लिए, बरकत में वक्त पे इबादत करें। आप देखिए कि अपनी चीजों का वक्त मुकर्रर करें, चार खाने बना लें, मैंने एक में इबादत रखनी है, एक में मामलात रखने हैं, एक में आराम करना है, एक में जिम्मेदारियों को पूरा करना है। आप देखेंगे जब हर चीज वक्त के साथ जुड़ी होगी तो वक्त में बरकत होगी। हम जब ढीला छोड़ देते हैं ना, अच्छा कर लेती हूँ, अच्छा ये कर लूँ, अच्छा बर्तन धो लूँ, अच्छा जरा ये कर लूँ, तो वो चीज़ रह जाती है। फिर आज का हमारा जो टाइम वेस्टर है वो क्या है? मायूसी। बहुत सारे लोग शैतान के इस नरगे में आ जाते हैं, मायूस हो जाओ, तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम बेकार हो, तुम्हारे अंदर खूबी कोई नहीं, तुम्हारे अंदर तो कोई सलाहियत नहीं, तुमने इतने दिन कुछ नहीं किया, देखो आज रमजान के इतने दिन गुजर के अब तुमने बोला बाकी दिनों में क्या करना है। मायूस करके हमारा जो वक्त है भी वो भी जाया करता है। तो आज अपने आप से पूछिएगा, क्या वाकई मैं खुद से मायूस तो नहीं हूँ? कल के छुट्टे की फिक्र न करें, जो बाकी है उसको ले लें। और आज की काबिले तकलीद शख्सियत इसी मिसाल में से आखरत की खेती का इरादा करने वाला खुद से सवाल करेंगे कि क्या वाकई मैंने आखरत की खेतियों के इरादे किए हुए हैं या दुनिया की। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे लिए इस इरादे को आसान कर दे। सूरह ताहा में भी आप पढ़े थे, वहाँ आजिला का लफ्ज़ था, इरादा करने के बाद कोशिश, और कितनी कोशिश, सायहा, जितनी उसकी कोशिश का हक है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि पिछली जिंदगी की कोताहियों को माफ कर दे आज से, टुडे अलान नाउ, आज से अल्लाह हमें बेहतरीन, प्रोडक्टिव और कामयाब जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए।